بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو اتنت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہی پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگی نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا۔ پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کاریہ کے لیے تیار کر دیں گے۔ اتہ نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاب پرد ہو، اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا۔
किंतु अत्यंत दुर्भाग्य वाला उससे कतराएगा वही जो बड़ी आग में गिर पड़ेगा, फिर वो उसमें न तो मरेगा न ही जिएगा। निश्चित रूप से जिसने अपने आप को पवित्र बना लिया वो सफल हो गया, और जिसने अपने पालनहार के नाम का स्मरण किया फिर नमाज अदा की। नहीं बल्कि तुम तो सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हो, जबकि परलोक अधिक उत्तम और शेष रहने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप छाड़वे में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, महर की पहली, सफर की 16 और सितंबर की 23 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे राजनीतिक चर्चा, और राजनीतिक चर्चा के बाद आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम, और अंतिम कार्यक्रम होगा आज की बात। ताजा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता का कहना है कि शहीदों के पवित्र खून ने इतिहास में इस्लामी क्रांति को अमर कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने तेहरान विरोधी अमेरिकी प्रतिबंधों को अमान्य करार दिया है। जनरल सुलेमानी की हत्या में शामिल अमेरिकी और इसराइली कमांडरों को मार दिया गया है। अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ समन जारी किया है। और अब आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने शहीदों के स्मरण दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि शहीदों के पवित्र खून ने इतिहास में इस्लामी क्रांति को अमर कर दिया है। वरिष्ठ नेता की आधिकारिक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने अपने संदेश में कहा है, पवित्र रक्षा सप्ताह महान शहीदों के नामों और यादों से सुसज्जित है। उनकी निष्ठावान कुर्बानियों ने ईरानी राष्ट्र को जीत उपहार स्वरूप प्रदान की। उनके पवित्र खून ने इतिहास में इस्लामी गणतंत्र की सच्चाई को दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा, इन महान हस्तियों ने कुर्बानी का पाठ पढ़ाया है। जहां कहीं भी निष्ठावान प्रयास होता है वहां जीत और गौरव भी होता है। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम ने 22 सितंबर 1980 को ईरान पर सैन्य चढ़ाई कर दी थी, जिसके बाद यह लड़ाई 8 साल तक जारी रही। ईरान के विदेश मंत्री ने वर्ल्ड रेड क्रॉस के प्रमुख के साथ मुलाकात में तेहरान के खिलाफ अमेरिका के दमनकारी प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें अमानवीय बताया है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने बुधवार को वर्ल्ड रेड क्रॉस के प्रमुख पीटर माउर के साथ मुलाकात में ईरान विरोधी अमरीका के अमानवीय प्रतिबंधों पर मानव अधिकार संस्थानों की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा, ईरानी जनता के खिलाफ अमरीका के दमनकारी और अमानवीय प्रतिबंध आतंकवाद है जिसकी सभी को आलोचना करनी चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी के साथ ईरानी विदेश मंत्री ने ईरान इराक युद्ध के दौरान लापता होने वालों और शहीदों के शवों की खोज में रेड क्रॉस की मदद और कोरोना से मुकाबले में रेड क्रिसेंट की सीमित लेकिन मूल्यवान सहायता के लिए उसका आभार जताया। अफगानिस्तान में भयंकर मानवीय संकट के खतरे का उल्लेख करते हुए अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा, ईरान पर कोरोना के व्यापक दबाव के बावजूद तेहरान का प्रयास है कि विस्थापित होने वाले अफगान नागरिकों का टीकाकरण किया जाए, लेकिन इसके लिए तुरंत रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। इस मुलाकात में रेड क्रिसेंट के प्रमुख ने भी हालिया वर्षों में ईरान के सहयोग की सराहना की और कहा, ईरानी समाज पर दबाव के बावजूद कोरोना महामारी के दौरान हमने ईरान में विस्थापित होने वाले अफगान नागरिकों के टीकाकरण के लिए प्रयास किए, लेकिन इसके लिए अभी भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। क्षेत्र में आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों की ईंट से ईंट बजाने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी जनरल अबू मेहदी अल मोहंदिस की हत्या का बदला लेने के लिए इस्लामी प्रतिरोधी मोर्चे ने इस हत्याकांड में शामिल अमेरिका और इसराइल के दो कमांडरों को मार गिराया है। केरल, जो खुद को पश्चिम एशिया को कवर करने वाले पत्रकार संचालित प्रकाशन के रूप में वर्णित करता है, ने एक वरिष्ठ सुरक्षा स्रोत के माध्यम से कहा है कि प्रतिरोध अक्ष ने उत्तरी इराक में एरबिल में एक सैन्य अभियान में दो उच्च रैंकिंग अमेरिकी और इजरायली कमांडरों को मार डाला है। द क्रेडल ने एक वरिष्ठ प्रतिरोधी अधिकारी के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। सूत्र ने द क्रेडल को बताया, इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल में अमेरिका के सीनियर कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स सी विलियम्स को एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया। हालांकि पेंटागन ने दावा किया था कि उनकी मौत कतर की अल उदैद सैन्य छावनी में हुई थी। ये शख्स जनरल सुलेमानी और अल मोहंदिस को शहीद करने की साजिश में शामिल था। इसी तरह से इस साजिश में शामिल इसराइली कर्नल शारून असमैन को भी एरबिल में मार गिराया गया था, लेकिन ज़ायोनी शासन ने दावा किया था कि असमैन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये पहली बार है कि प्रतिरोधी मोर्चे ने ईरानी और इराकी जनरलों की मौत का बदला लेने के लिए किए गए ऑपरेशन की जिम्मेदारी स्वीकार की है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात में कहा है कि उनका देश ईरान का कर्ज अदा करने के लिए तैयार है। बुधवार की दोपहर ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान और ब्रितानी विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस ने अपनी मुलाकात में पारस्परिक संबंधों, एटमी डील और अफगानिस्तान के हालात के बारे में बातचीत की। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों की बहाली के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने चार दशक पुराने ईरान के कर्ज की रकम ब्रिटेन द्वारा अदा किए जाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान ने परमाणु समझौते में बातें बहुत सुनी, लेकिन अमल नजर नहीं आया है और अमल करने से भागने में ब्रिटेन भी शामिल रहा है, अतः ये प्रक्रिया बदलनी चाहिए। न्यूयॉर्क में जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन चल रहा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान और अरब देशों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इससे पहले इराक की राजधानी बगदाद में इसी तरह की महत्वपूर्ण बैठक में ईरान और अरब देशों की वार्ता हुई थी। दोनों ही वार्ताओं में सऊदी अरब ने भी हिस्सा लिया है। महर न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने न्यूयॉर्क में सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के नेताओं से मुलाकात की है। समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान की नई सरकार पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अरब देशों के विदेश मंत्रियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा है कि हालिया महीनों में सऊदी अरब से नियमित रूप से संपर्क रहा है और द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में सार्थक बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को समाचार एजेंसी इरना से बातचीत में ईरान और सऊदी अरब के बीच जारी वार्ता की ताजा स्थिति के बारे में कहा कि फारस खाड़ी के इलाके की सुरक्षा के विषय में भी बड़ी गंभीर वार्ता में प्रगति हुई है। खतीबजादे का कहना था कि ये वार्ताएं कभी रुकी नहीं थी और ईरान में 13वीं सरकार के गठन के बाद उचित स्तर पर दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं, जबकि इस बीच न्यूयॉर्क की एक अदालत ने सिखों की हत्या के केस में उन्हें समन जारी कर दिया है। सिखों के संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 17 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क की अदालत में केस फाइल किया, जिसमें नरेंद्र मोदी को पक्ष बनाया गया है। अदालत ने मजिस्ट्रेट जज कैथरीन पार्कर को केस का इंचार्ज जज नामजद किया है और दोनों पक्षों को जज के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिखों के संगठन ने भारतीय प्रधानमंत्री के अमरीका दौरे के विरोध की काल विधि है। दूसरी ओर कश्मीरियों की ओर से जनरल असेंबली में मोदी के भाषण के दौरान विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है। संगठन का आरोप है कि सरकार ने पंजाब और हरियाणा के किसानों के खिलाफ ताकत का गलत इस्तेमाल करके हिंसक कार्रवाइयां की, जिससे लगभग 600 किसानों की मौत हो गई। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद ने कहा है कि दमिश्क सरकार सीरिया के भीतर तुर्क सैनिकों की उपस्थिति को गैर कानूनी कब्जा मानती है और अंकारा से मांग करती है कि फौरन अपने सैनिक सीरिया से बाहर निकाले। फैसल मिकदाद ने कहा कि इदलिब इलाके में तैनात की वजह तुर्क सैनिकों की गैर कानूनी उपस्थिति और तुर्की की ओर से आतंकवादी संगठनों का समर्थन है। सीरियाई विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की तत्काल अपने सैनिकों को सीरिया से बाहर निकाले और विश्व समुदाय की जिम्मेदारी है कि उत्तरी सीरिया के इलाकों को गैर कानूनी कब्जे से आजाद कराने की कोशिशों में दमिश्क सरकार की मदद करे। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद से भी मांग की थी कि सीरिया के भीतर तुर्की की गतिविधियों के बारे में स्पष्ट स्टैंड ले। अमरीकी कांग्रेस के प्रस्ताव से उस अनुच्छेद को हटा दिया गया है जिसमें इसराइल को मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की मरम्मत के लिए $1 अरब की रकम देने की बात कही गई थी। इस पर जहां इसराइल को गहरा सदमा पहुंचा है, वहीं अमेरिका में इसराइल समर्थक यहूदी संगठन आईपेक ने कहा है कि कांग्रेस में कुछ कट्टरपंथी इसराइलियों और फिलिस्तीनियों का जीवन दांव पर लगाकर राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित है कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। कोरोना महामारी की नई लहर फिर से लोगों की जान ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार विफल रहने के बाद अब भी फ्रांस के राष्ट्रपति के व्यवहार में बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में पेगासस जासूसी मामला फिर न्यायालय में उठा है। दोस्तों, इन विषयों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रांस के क्रियाकलापों की वजह से उसको अपने यूरोपीय घटकों की ओर से विश्वासघात का सामना है। इस बारे में एक रिपोर्ट लेकर उपस्थित हैं अख्तर अब्बास।
घरेलू स्तर पर तमाचा खाने के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाचा खाने की बात सामने आ रही है। पनडुब्बी के समझौते के रद्द होने के बाद, जिसे हथियारों के संबंध में शताब्दी का समझौता करार दिया गया था, फ्रांस की पार्टियों और नेताओं ने इसे मैक्रों के लिए अपमानजनक और लज्जाजनक करार दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में केवल 7 महीने ही बचे हैं। ये समझौता केवल तमाचा खाने जैसा ही रहा है, ये फ्रांस के लिए कोई लाभदायक नहीं रहा है। मैक्रों की यह खामोशी अपमानजनक और 5 दिन की भारी खामोशी के बाद यूरोपीय संघ ने एक बयान जारी करके फ्रांस के संबंध में किए जाने वाले फैसले को अस्वीकार्य करार दिया और अपने घटकों के संबंध में अमरीका द्वारा झूठ बोलने और उसे सही न बताने की कड़े शब्दों में निंदा की।
Aujourd'hui, la politique américaine est encore assez difficile à discerner.
आज अमेरिका की नीति ने बहुत अधिक समस्याएं पैदा कर दी हैं। उसके फ्रांस जैसे घटक भी उससे सुरक्षित नहीं हैं और उन्होंने नुकसान उठाया है। यद्यपि फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से पनडुब्बी के समझौते को रद्द करने की वजह अमेरिका और ब्रिटेन का उकसाना करार दिया, लेकिन आंतरिक आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति मैक्रों की केवल यही पराजय नहीं बल्कि उन्हें दुनिया को पाठ सिखाने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके सबसे निकटवर्ती घटक जो बाइडेन तक उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। फ्रांस को अपने घटकों की ओर से विश्वासघात का सामना है। अगर अमेरिका और अन्य लोगों की नजर में फ्रांस महत्वपूर्ण घटक है, तो फिर व्यवहारिक रूप से उसका सम्मान क्यों नहीं किया गया? खेद की बात यह है कि संबंध में हमारे राजनेताओं ने कोई भी पाठ नहीं सीखा। स्विट्जरलैंड और बेल्जियम की ओर से राफेल विमान की खरीदारी के समझौते को रद्द करने और उनकी जगह अमेरिका के F-35 विमान खरीदने का फैसला अन्य नाकामियां हैं जो मैक्रों के नाम पर चढ़ गई हैं। पनडुब्बी के मामले को 1 सप्ताह गुजर जाने के बावजूद फ्रांस के राष्ट्रपति अब भी खामोश हैं, क्योंकि उनके सामने राष्ट्रपति चुनाव हैं, इसीलिए वो सारा ध्यान उस पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह सवार हुसैनी, IRIB न्यूज, पेरिस।
पूरी सावधानी बरतने के बावजूद COVID-19 की नई लहर ब्रिटेन में फिर तेज हो गई है। विस्तार से बता रहे हैं अहमद अब्बास।
ब्रिटेन में कोरोना महामारी की लहर फिर से तेज हो गई है। गत मंगलवार को 200 से अधिक जानें चली गईं, जो पिछले 7 महीने में सबसे घातक दिन साबित हुआ। ये चिंता का विषय है। चूंकि युवाओं का टीकाकरण जल्द ही शुरू हुआ है, इसलिए सारा इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया जाता है कि उनकी वजह से संक्रमण बढ़ता है।
I think the younger people...
बुजुर्ग का कहना है कि जिन युवाओं ने टीका नहीं लगवाया है और समाज में रहते हैं और सामान्य से अधिक गतिविधियां करते हैं, उनकी वजह से कोरोना का संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। ब्रिटेन में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 75 लाख से अधिक हो गई है। ये बड़ी संख्या है। ब्रिटेन में पिछले 1 महीने में 10 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए। ब्रिटेन में लगभग 67 मिलियन की आबादी है और ये देश कोरोना के संक्रमितों की संख्या के हिसाब से 4th पर आ गया है।
Is now higher than it was at the previous peak.
7,000 से अधिक कोविड के बीमार अस्पतालों में नाजुक हालत में हैं। लोगों में कोरोना का खौफ मौजूद है और चिंता बढ़ी हुई है। महिला का कहना है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती जा रही है और वैक्सीन का असर भी कम हो रहा है। ब्रिटेन की सरकार केवल उन लोगों को कोरोना से मरने वालों में गिनती है जो इस वायरस से संक्रमित होने के बाद 28 दिन के भीतर जिंदगी की बाजी हार जाएं। सरकारी संस्थाओं का कहना है कि इस देश में 157,000 लोगों की कोविड से मौत हुई है। ब्रिटेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते समय मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाना जरूरी है। वो वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि खुद को सुरक्षित न समझें और प्रोटोकॉल का पालन छोड़े नहीं, क्योंकि उनके भी संक्रमित होने की आशंका मौजूद है। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। पेगासस जासूसी मामले में जनरल तुषार मेहता का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने के संकेत दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से समिति में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की है, इस कारण से आदेश जारी होने में विलंब हो रहा है। इस संदर्भ में आदेश जल्द ही आने की संभावना है। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं लंबित हैं। यह याचिकाएँ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा सहित कई जाने माने लोगों की हैं। पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान केंद्र ने विशेषज्ञों की एक निष्पक्ष समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने कहा था कि उसकी ओर से गठित ये समिति कोर्ट की निगरानी में काम करेगी और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्य न्यायाधीश ने आज मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील CU सिंह को बताया कि कोर्ट अपनी ओर से कमेटी के गठन पर विचार कर रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से मना किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार बताए कि वह पेगासस का प्रयोग करती है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा उत्तर देश के हित में नहीं होगा और दुश्मन उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा था कि ये विषय सार्वजनिक चर्चा का नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार के रवैये का विरोध किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारा आरोप है कि सरकार जानकारी छुपाना चाहती है तो फिर उसे कमेटी बनाने की अनुमति क्यों दी जाए। सरकार की ओर से कहा गया है कि वह इस संदर्भ में कुछ छुपाना नहीं चाहती, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते सॉफ्टवेयर इस्तेमाल पर सार्वजनिक चर्चा नहीं चाहती। पेगासस मामला संसद के मॉनसून सत्र में भी तीव्रता से उठा था और विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाइयां बाधित हुई थी। सरकार ने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के प्रयोग के आरोप को खारिज कर दिया था, जबकि विपक्षी दलों और याचिकाकर्ताओं ने राजनेताओं, पत्रकारों, पूर्व जजों और सामान्य नागरिकों की पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा जासूसी का आरोप लगाया है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अब हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे आज की बात, किंतु उससे पहले पेश है पवित्र प्रतिरक्षा के संबंध में विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
ईरानी जनता के प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो उसका प्रेरणा स्रोत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आंदोलन ही रहा है। इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड 8 वर्षीय युद्ध है, जिसके दौरान ईरान की जनता ने सद्दाम शासन के हमलों के मुकाबले में बहादुरी से मुकाबला किया। जंग में हजार बुराइयां हैं, इससे इंसान की नफरत और आक्रोश हरकत में आते हैं, लेकिन कभी इसमें कुछ सुंदरताएं भी दिखाई देती हैं। ये वैसे तो मौत और तबाही की याद दिलाती है, लेकिन जब देश की रक्षा, महान मानवीय मूल्यों और धर्म की रक्षा का मामला हो तो जंग पवित्र और सराहनीय रूप ले लेती है। सद्दाम शासन के हमलों के मुकाबले में ईरानी जनता की 8 साल तक चलने वाली रक्षा की लड़ाई इसी तरह की लड़ाई थी। इस राह में शहीद होने वाले पुरुष, युवा और महिलाएं प्रतिरोध के अफसाने और चैंपियन बन गए। उनकी याद अमर हो गई क्योंकि उन्होंने महान मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की।
सद्दाम ने ईरान पर हमले की शुरुआत 22 सितंबर 1980 को की थी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ सद्दाम की जंग 8 साल तक जारी रही। सद्दाम और उसके पश्चिमी समर्थक ब्लॉक और पूर्वी ब्लॉक ईरान के टुकड़े करने और ईरान में स्थापित इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में नाकाम रहे। ये जंग इस्लामी इनकलाब की उमंगों में नया निखार आ जाने और सभी क्षेत्रों में ईरान के विकास का कारण बनी। ईरान की जनता 10,000 शहीदों और घायलों को याद करने के लिए करोड़ों युवाओं, महिलाओं और पुरुषों की बहादुरी को याद करने के लिए 22 से 28 सितंबर तक पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह मनाती है।
वैभवशाली इस्लामी क्रांति से पहले और बाद में जनता ने अपने नारों और अपने अमल से साबित किया कि वह अपने आंदोलन को करबला के अभियान की एक कड़ी मानते हैं। प्रतिरोध, त्याग, जुल्म से जंग, न्याय की मांग, आजादी की मांग और इनकलाब की दूसरी विशेषताएं सबका स्रोत करबला में इमाम हुसैन का आंदोलन है। ईरान की इस्लामी क्रांति इमाम हुसैन के आंदोलन से प्रेरित समकालीन आंदोलन है। इसके गहरे असर से इंकार नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन के नेता इमाम खुमैनी और इमाम खामेनेई, इसी तरह दूसरे नेता बार बार इमाम हुसैन के आंदोलन के अनुसरण पर जोर देते रहते हैं। इस संदर्भ में इमाम खुमैनी कहते हैं कि ईरान की इस्लामी क्रांति आशूर की एक झलक है।
ایران کی اسلامی کرانتی کے لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایک اوسر پر کہا کہ آج ذرا غور کیجئے کہ آدھے دن کے بھیتر ہونے والی کربلا کی یہ گھٹنا ہمارے اتہاس میں کتنی برکتوں والی ثابت ہوئی ہے اور آج تک یہ گھٹنا پریرنا کا سروت بنی ہوئی ہے۔ یہ گھٹنا بس یہیں تک سیمت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پڑھا جائے اور اسے بیان کیا جائے، لوگوں کو سن کر اچھا لگے اور لوگ بھاوک ہو جائیں۔ یہ گھٹنا برکتوں اور نئے نئے آندولنوں کا سروت ہے۔ ہمارے انقلاب، جنگ اور اتہاس میں یہ چیز بہت صاف نظر آتی ہے۔ شیعہ اتہاس میں بلکہ سماج میں ظلم کے خلاف ہر آندولن میں، چاہے اس کا سمبندھ غیر شیعہ سمودایوں سے ہی کیوں نہ ہو، کربلا کی گھٹنا بہت پربھاوی نظر آئی ہے، بلکہ شاید غیر اسلامی ماحول میں بھی اس گھٹنا کا اثر دیکھنے میں آیا ہے۔ ہمارے اتہاس یعنی 1400 سال کے اس اتہاس میں کربلا کی آدھے دن کی اس گھٹنا کا بڑا گہرا اثر رہا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہماری 8 سال کی جنگ اسی 7-8 گھنٹے کی گھٹنا سے پریرت ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ البتہ دونوں کی تلنا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کربلا کی گھٹنا بہت زیادہ مہان ہے۔ اتہاس میں ہمیں کوئی بھی گھٹنا ایسی نظر نہیں آتی جو بلیدان اور قربانیوں میں کربلا کی گھٹنا جیسی ہو۔ اس کے سامنے ہر گھٹنا بہت چھوٹی اور معمولی نظر آتی ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گھٹنا کی ایک جھلک ہے۔
امام حسین کا آندولن اسلامی اتہاس کا سدھاروادی آندولن تھا، جس نے ویچارک، راجنیتک اور ساماجک کھیتروں میں آنے والی نسلوں کے لیے بہت سارے سندیش اور بہت سارے نتیجے چھوڑے۔ عاشور میں ملنے والا سبق ہمیشہ ایک جیونت وشے رہا ہے۔ یہ زندگی دینے والی اور نیا آندولن شروع کرنے والا وشے ہے۔ ویسے تو یہ گھٹنا ایک خاص سمے میں اور خاص جگہ پر ہوئی، لیکن اس سے ملنے والے سبق کسی خاص جگہ اور سمے تک سیمت نہیں ہیں۔ نیائے کی مانگ، ظلم سے جنگ، تیاگ، بہادری، سوابھیمان، سوتنترتا پریم، اچھائیوں کا پرچلن اور برائیوں سے پرہیز کربلا کی گھٹنا سے ملنے والے سبق ہیں۔ جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اس سمے سے اب تک بہت سارے آندولن اور تحریکیں اس گھٹنا سے پریرنا لے کر نکلی۔ ورتمان سمے میں ایران کی اسلامی کرانتی امام خمینی کے نیتریتو میں شروع ہوئی، لیکن اس کا بھی پریرنا سروت امام حسین کا آندولن تھا۔
ورتمان سمے میں سامراجوادی طاقتیں انسانوں کو غلامی کی دعوت دیتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا آندولن سنگھرش کی پریرنا دینے کے ساتھ بھی یہ بھی بتاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کس طرح جنگ کرنی ہے۔ سنگھرش میں سب سے پہلے قدم میں جس چیز پر توجہ رکھنا ضروری ہے وہ بے خوفی ہے۔ بڑی طاقتوں کے سینکوں کی بڑی سنکھیا اور ہتھیار کے بھنڈار سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی دشمن کی بڑی سنکھیا اور ہتھیاروں سے نہیں ڈرے۔ دشمن اپنی بڑی سنکھیا کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے ارادے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ پیدا نہ کر سکا۔ بے خوفی راشٹروں کے پرتیرود کا مضبوط کارک ہے۔
ایران کی جنتا کا 8 ورشی یدھ امام حسین کی دعوت سویکار کر کے ان کے مارگ پر چلنے کا بڑا سندر درشیہ ہے۔ 8 ورشی یدھ کے جیالوں نے اپنے زمانے کے امام حسین یعنی امام خمینی کی آواز پر آگے بڑھے۔ یہ عاشور کی پاٹھشالا میں پڑھنے والے جوان تھے جنہوں نے کربلائی شوق اور جذبے کے ساتھ قدم بڑھائے اور ظلم کا مقابلہ کیا۔ جنگ میں سنگھرش کرتاؤں کا پرتیرودھ اور سفلتا یہ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے امام حسین کا انوسرن کرتے ہوئے اپنے سنگھرش میں اللہ پر بھروسہ کیا اور صدام اور اس کے سمرتھکوں کے مقابلے میں پورے ساہس سے ڈٹ گئے۔ بھاری دباؤ اور بڑی سنکھیا میں قربانیاں دینے کے باوجود یہ ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے امام حسین کی طرح اپنی گریما اور اپنے دھرم کی رکشا کی۔ ईरान की जनता आजादी और अपने भविष्य का फैसला खुद करने के अधिकार पर जोर दे रही थी। आजादी का सबक उसे इमाम हुसैन के आंदोलन से मिला।
दोस्तों, ईरान की जनता को मालूम था कि बड़े दुश्मन के मुकाबले में उनके सैनिकों की संख्या और हथियार का भंडार कम है, लेकिन उनके पास ईमान की ताकत है जो उनकी विजय को यकीनी बना सकती है। शहीद चमरान इस सुंदरता को बड़े सलीके से बयान करते हैं। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे सरदार, मैं आया हूँ कि आपके साथ मिलकर कुफ्र और जुल्म से जंग करूं, अपने पूरे अस्तित्व से आया हूं। तासुआ है, यजीदी ताकत का एक बड़ा समूह टैंकों, तोपों, बख्तरबंद गाड़ियों, बहुत सारी गाड़ियों और सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा है। सत्य और असत्य आमने सामने हैं। दुश्मन बिजली की रफ्तार से आगे आ रहा है। मैं चाहता हूं कि करबला में आपके साथी जिस तरह से लड़े, उस अंदाज से जंग करूं।
इराक के पास न सैनिकों की कमी थी, न बख्तरबंद गाड़ियों की कमी थी, न हथियारों की कमी थी। वह सैन्य बल और सैन्य उपकरण किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं था। कहते हैं कि इराक की सैन्य ताकत ईरान के मुकाबले में 8 गुना और कुछ अनुमानों के अनुसार 15 गुना थी। लेकिन सद्दाम जिस चीज को नहीं समझ पाया वह ईरानी जनता की बहादुरी और ईमान की ताकत थी, जो इस्लाम की रक्षा में और जनता की सुरक्षा के मामले में किसी भी चीज से नहीं डरती थी। सद्दाम को यह पता नहीं था कि ईरान की जनता इमाम हुसैन की पाठशाला से बहादुरी की सीख लेती है।
ईरान के खिलाफ सद्दाम की जंग को इस्लामिक क्रांति और इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कहा जा सकता है। इसका मकसद ईरान की इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराना था, मगर यह सपना साकार न हो सका। आशूर की पाठशाला के शिक्षार्थी 8 साल जो जंग की, उसमें जंग के मोर्चे मानवीय मूल्यों और महान शिक्षाओं का स्रोत बन गए।
तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का वक्त समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के रवैये पर अदालत की ओर से जताए गए असंतोष की।
بھارت میں دلی کی ایک عدالت نے دنگوں سے جڑے ہوئے ایک معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے دلی پولیس کو پھٹکار لگائی۔ دلی میٹروپولیٹن مجسٹریٹ ارون کمار گرگ نے کہا کہ دلی پولیس دوارا بھیوجن اور جانچ میں ڈھول مل رویہ برتنے کی وجہ سے دلی دنگوں کی سنوائی میں دیری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھیوجن سے لے کر ایک جانچ ایجنسی کے روپ میں دلی پولیس کے ڈھول مل رویے کو ڈی سی پی اتر پورو کے ساتھ ساتھ اتری رینج کے جوائنٹ سی پی اور دلی کے پولیس کمشنر کے سنگیان میں بھی لایا گیا۔ اس کے بعد بھی ان ادھیکاریوں دوارا ان معاملوں کے اچت ابھیوجن کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے، اور اگر اٹھائے گئے تو انہیں کورٹ کے سنگیان میں نہیں لایا گیا ہے۔ دلی کے اتر پوروی علاقے میں 23 فروری 2020 کو شروع ہوئے دنگوں میں کل 53 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کئی لوگوں کے گھروں اور دکانوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اسے بیتے 7 دشک میں دلی میں ہوا سب سے بڑا ہندو مسلم دنگا کہا گیا۔ دلی پولیس پر آروپ لگے کہ اس نے دنگوں کو روکنے کے لیے پریاپت قدم نہیں اٹھائے۔ عدالتوں میں دلی پولیس کے ادھیکاریوں سے جواب مانگے گئے۔ عدالت کی اور سے پولیس کے رویے پر اسنتوش جتایا جانا بہت مہتوپورن تھا اور یہ خبر میڈیا میں تیزی سے پھیلی۔ دراصل دلی پولیس کے رویے کو لے کر کافی پہلے سے سوال اٹھتے رہے ہیں، پولیس پر کئی طرح کے آروپ لگتے رہے ہیں۔ ناصر نام کے دلی واسی کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، ان پر حملہ ہوا، انہیں گولی لگی جس سے ان کی ایک آنکھ چلی گئی، مگر پولیس ان کے 6 پڑوسیوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں لکھ رہی تھی جو اس کے آروپی تھے۔ عدالت نے اس معاملے میں پولیس کو پھٹکار لگائی۔ دلی کے اتر پوروی علاقے گھونڈا میں رہنے والے محمد ناصر دنگوں کے دوران گھائل ہو گئے تھے۔ ناصر نے اپنی یاچیکا میں آروپ لگایا تھا کہ ان پر ہوئے حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے بھجن پورا پولیس اسٹیشن کے ادھیکاریوں نے ان کی شکایت دوسری ایف آئی آر کے ساتھ جوڑ دی جس کا ان پر ہوئے حملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ناصر کے وکیل محمود پراچا نے میڈیا کو بتایا کہ جس ایف آئی آر کے ساتھ پولیس نے ناصر کی شکایت کو جوڑا ہے اس میں ابھیوکت مسلمان ہیں اور پیڑت بھی مسلمان ہیں۔ پراچا نے جو حلف نامہ عدالت میں دائر کیا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ پولیس ناصر پر ہوئے حملے کی شکایت پر ایف آئی آر درج کرنے سے بچتی رہی جبکہ ناصر نے حملہوروں کو نامزد کیا تھا۔ اس معاملے میں اترکت ستر نیادھیش ونود یادو نے معاملے کی سنوائی کے بعد دلی پولیس پر 25,000 روپے کا جرمانہ لگایا تھا۔ ناصر نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔
سر، سب سے پہلے تو ہمیں جو تھریٹ اور دھمکیاں دی جاتی تھیں، آئے دن لوگ ہمیں دھمکاتے تھے کیونکہ پولیٹیکل کنیکشن ان سے بہت مضبوط، ایکس ایم ایل اے ہیں نریش گوڑ، تو ان کا نام لے کے ہمیں دھمکا کے جاتے تھے کہ تو ایف آئی آر درج کر کے دکھا دے اگر تجھ میں طاقت ہے تو، اور وہ دیکھا تو ایف آئی آر درج بھی نہیں ہو رہی تھی ہماری۔ پولیس کہہ رہی تھی کہ آپ کی ایف آئی آر دوسری ہے اور جس میں میرا کوئی رول نہیں، میرے کوئی بیان نہیں ہوئے تھے، بیان سے پہلے میری چارج شیٹ فائل کر دی تھی جس میں مجھے انوالو دکھایا تھا۔
محمود پراچا ناصر کے وکیل ہیں، وہ دوسرے بھی کئی دنگا پیڑتوں کے وکیل ہیں اور پولیس کے ذریعے کی گئی ناانصافی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ پراچا نے اپنے انوبھو بیان کیے۔
سی، فرسٹ آف آل، وی آل شوڈ، انڈینس ہو بلیو ان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا شوڈ ریئلائز دا فیکٹ دیٹ اف وی ہیڈ سم لائرز اینڈ سم جرنلسٹ اینڈ سم سوشل ورکرز ہیڈ ناٹ fought for this, this truth would never have come out, that police is hand in glove, not the entire police, but some corrupt officers of Delhi police are hand in glove with a political ideology, and they were doing all these criminal activities at the behest of their political masters. So if this truth had not come out in the open, then people would at least have reduced faith in Indian constitution. That is the first message.
کئی بار ہو چکا ہے کہ عدالت نے دلی پولیس کے رویے پر آپتی جتائی ہے۔ بیتے کچھ مہینوں میں دلی ہائی کورٹ سمیت کئی عدالتیں لگاتار دلی پولیس کی جانچ پرکریا ابھیوجن اور اس کی چارج شیٹ پر سوال اٹھا رہی ہیں، لیکن کیندر سرکار کی اور سے دنگوں کے دوران دلی پولیس کے کام کی سراہنا کی گئی۔ ایک بار تو دلی ہائی کورٹ میں جسٹس ایس مرلی دھر کو دلی پولیس کے اسپیشل کمشنر سے یہ کہنا پڑا کہ جب آپ کے پاس بھڑکاؤ بھاشنوں کے کلپ موجود ہیں تو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ شہر جل رہا ہے تو کارروائی کا اچت سمے کب آئے گا۔ یہی نہیں لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ پولیس غلط طریقے سے گرفتاریاں کر رہی ہے۔
کہہ رہے وہ گھر گرستی والا بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اپنے پاپا کی ٹھیلی پہ کام کرتا ہے، اپنے پاپا کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ ہم لوگ دو وقت کی روٹی مل جائے وہی بہت ہے۔ ہم لڑائی دنگا کریں گے، اب بہن بھائیوں کا پیٹ پالے گا وہ؟ اندھا دھندی ہے، ہر گلی سے لڑکے اٹھائے جا رہے ہیں، ہر گلی سے بتاؤ کتنوں۔ اور جن نے دنگا کرا، جن نے مسجدوں میں آگ لگائی، جن نے سب کو کاٹا، وہ آج دن تک گھوم رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں پولیس گرفتار کر رہی ہے؟ ان کے لیے پولیس نہیں ہے کیا؟ کیا مسلمانوں پہ اتیاچار ہوئے گا؟ یہ نکال دو دیش سے، وہی تو ہو گیا کہ بچوں کو مار دیں گے تو ماں باپ تو خود ہی مر جائیں گے۔ اے باپ کے ساتھ بیٹے کے ساتھ باپ کو بھی لے گئے، تو بھی چل۔ اے ہمارا تو گھر میں کوئی بھی نہیں رہا اب۔
دلی پولیس کے ڈی سی پی پرمود کشواہا کے انوسار اس معاملے میں اتری دلی کے 11 پولیس تھانوں میں 755 ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور 1753 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس سال کی شروعات میں دلی پولیس نے ایک آر ٹی آئی کے جواب میں بتایا تھا کہ 27 جنوری 2021 تک 557 لوگوں کو ضمانت دی گئی اور کل 300 معاملوں میں چارج شیٹ داخل کی گئی، لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں دلی کی تمام عدالتوں نے دنگوں سے جڑی یاچکاؤں کی سنوائی کرتے ہوئے دلی پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اسی آدیش میں جج ونود یادو نے دلی پولیس کمشنر سے کہا تھا کہ وہ ناصر کے معاملے کی جانچ کرنے والے پولیس ادھیکاریوں کے اوپر کارروائی کر کے عدالت کو اس کی سوچنا دے۔ عدالت نے اپنے آدیش میں کہا تھا کہ ناصر کے معاملے میں دلی پولیس کی جانچ بے ڈھنگی، لاپرواہ اور حاسیاسپد ہے۔ آدیش میں کہا گیا کہ ناصر نے جن لوگوں پر حملے کا آروپ لگایا ہے، پولیس کے ادھیکاریوں نے ان کا بچاؤ کرنے کے راستے بنانے کی کوشش کی۔ دلی ہائی کورٹ نے حال ہی میں دنگوں کے دوران مارے گئے دلی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کی ہتیا کے معاملے میں 5 ابھیوکتوں عارف، شہباد، فرقان، سولین اور تبسم کو ضمانت دی۔ کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ لوک تنتر میں ویروھ پردرشن کرنا اور اپنی اسہمتی ویکت کرنا ایک مولک ادھیکار ہے۔ کورٹ نے پولیس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ادھیکار استعمال کرنے والوں کی قید کو جائز ٹھہرانے کے لیے ادھیکار کے پریوگ ماتر کو ہتھیار کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس سبرامنیم پرساد نے کہا تھا بھارتیہ دنڈ سنہتا کی دھارا 149 کو وشیشتا جب اسے دھارا 302 کے ساتھ پڑھا جائے سامانیہ آروپوں اور اسپشٹ ثبوتوں کے آدھار پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھیڑ سے جڑا معاملہ ہو تب عدالتوں کو ضمانت دینے یا خارج کرتے سمے اس نتیجے پر پہنچنے میں کوتاہی برتنی چاہیے اور غیر قانونی سبھا کے سبھی سدسیہ ایک غیر قانونی ساجھے ادیشی کو حاصل کرنے کا ساجھا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہیں ایک بحث یہ بھی ہے کہ پولیس بہت کٹھن حالات میں ڈیوٹی کرتی ہے۔ پورو ڈی جی پی پرکاش سنگھ کہتے ہیں کہ پولیس بڑی کٹھن پرستھتیوں میں ڈیوٹی کرتی ہے۔
See, the conditions are extremely difficult apart from the fact that the nature of the duties are very uncertain and the police act itself says that policemen are on duty all the time and that has been interpreted to deploy them just any time and round the clock. There have been several studies on the subject. The National Productivity Council carried out a study. The McKinsey carried out a study. Recently, the Bureau of Police Research and Development commissioned Mr. Kamal Kumar, a retired police officer, to undertake a study. All these studies broadly paint the same picture, that a policeman in Thana is generally on duty from 11 to 14 hours. And the tragedy is that even after this 14 hours, when he goes back home, there is no guarantee that he would have 8 or 10 hours with his family. Sometimes he has, as Kamal Kumar's report very graphically paints, he is having his dinner. When he gets a call that there is some kind of emergency, you come back immediately. So, there is tremendous amount of uncertainty in the nature of duties. Apart from back, the arduous nature of duties, the hazards, the risk to life. You see, more policemen are killed in India in the performance of duties than in any other country of the world.
पूर्व होम सेक्रेटरी बीपी सिंह का कहना है कि पुलिस की कठिनाइयों का उन्हें एहसास है और उन्होंने पुलिस के लिए कुछ करने की कोशिश की।
I tried to do something as Union Home Secretary. First, I wanted that all the police stations which were there on 26th January 1950, that should be earmarked and we should put a fencing, give them accommodation and then jails, because that is another place where policemen had to go and run. I wanted the similar thing for jails. And the World Bank was willing to give us $1 billion. But somehow or the other, the political judgment was that that will give us an impression that we are building a police state. So that was dropped.
लेकिन दूसरी ओर पुलिस के रवैये पर अदालतों की टिप्पणी को देखा जाए तो ये भी पता चलता है कि पुलिस कथित रूप से बेगुनाहों के खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही है और पुलिस के इस रवैये की वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, बल्कि बहुत से मामलों में पुलिस इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन रही है। टीकाकार कहते हैं कि जजों की इन टिप्पणियों से केवल कुछ गिने चुने मामलों की ही मीडिया और अन्य हलकों में निशानदेही होती है जहां पुलिस ने ज्यादती की होती है, वरना इस प्रकार के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात यहीं पर समाप्त होता है।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। सभा के अंत में मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर सुन लें। वरिष्ठ नेता का कहना है कि शहीदों के पवित्र खून ने इतिहास में इस्लामी क्रांति को अमर कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने तहरान विरोधी अमरीकी प्रतिबंधों को अमानवीय करार दिया है। जनरल सुलेमानी की हत्या में शामिल अमरीकी और इसराइली कमांडरों को मार गिराया गया है। अमरीका की एक अदालत ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ समन जारी किया है। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.